नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तर्कश का केवल एक तीर है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचल देगा। श्री मोदी ने रोहतास के विक्रमगंज में 48,500 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी की। 1,250 पदों के लिए 2 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान के साथ दुनिया भर ने देखा। श्री मोदी ने आज रोहतास के विक्रमगंज में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में खुद को सुरक्षित मानने वाले आतंकियों और उनके ठिकानों को देश की सेनाओं ने कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया।
भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए, उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है।
श्री मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उन्होंने बिहार की धरती से आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलने का जो वादा किया था वो आज पूरा हुआ है।
प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूँ तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अडिग है और कभी नहीं रुकेगी।
और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा।
प्रधानमंत्री ने सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जांबाज सुरक्षा बलों के अदम्य पराक्रम और साहस का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए ये अभेद्य चट्टान है।
सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जांबाज सुरक्षा की अभेद्य चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ।
श्री मोदी ने कहा, आतंकवाद हो या नक्सलवाद, देश के दुश्मनों से तेजी से और निर्णायक रूप से निपटा जाएगा।
2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री ने रोहतास के विक्रमगंज में 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, सड़क, रेल और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी के नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 का शिलान्यास किया। इसके तहत 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे प्लांट की कुल क्षमता बढ़कर 4,380 मेगावाट हो जाएगी। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
आज मुझे इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहाँ करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बिहार में आज हर तरफ 4 लेन और 6 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा है। पटना से बक्सर, गया जी से डोभी, पटना से बोधगया जी, पटना, आरा, सासाराम, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, हर तरफ तेजी से काम हो रहा है।
श्री मोदी ने कांग्रेस और राजद पर दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज इन पार्टियों को सामाजिक उत्थान की बातें याद आ रही हैं।
कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है तो इन्हें अपना अस्तित्व बताने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की ओर से जाति आधारित गणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया।
तो जो कुछ भी बिहार को मिला है गौरव की बात और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया और बिहार को भी उससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए नमन करिए। और हम यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं।
कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राजवीर रंजन सिंह, चिराग पासवान और नित्यानंद राय के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैभव के क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने वैभव को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। आतंकवाद के उन्मूलन के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाओं में लगे हैं। जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर है। इस प्रतिनिधिमंडल ने जकार्ता में इंडोनेशिया के थिंक टैंक और शिक्षाविदों के विद्वानों और शोधकर्ताओं के साथ कई बैठकें की। इस अवसर पर श्री झा ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुपालन कर रहा है।
अभी जो मिले हैं ये नदतुल इस्लाम जो इनका ये है, खास करके ये लोग मॉडर्निटी और जो इनका रिलीजन है उस मॉडर्निटी के साथ कैसे अपने को कोप अप करे, इस पर इनका काम है, बड़ा अच्छा काम है उस मामले में। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि हम खुद मुस्लिम है, हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहां पर, और इस पेन को भी समझ सकता है इंडिया का, तो इनका फेवरेबल ये सपोर्ट था।
इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क की यात्रा पर है। इस दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि डेनमार्क ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीतियों का पूरी तरह समर्थन किया है।
Mr. Christian Bach, a very senior parliamentarian of the Foreign Affairs Committee also, made a wonderful meeting with him. He understood the problem of terrorism, conveyed his views, and what we appreciate is Denmark was the first to convey solidarity. He is a leader of great stature, has worked in the UN also, quite understood India's position. We thank from the core of our heart.
बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1250 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 2 जून से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। आयोग ने कहा है कि पीटी परीक्षा की संभावित तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित की है। इधर आयोग ने सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षा 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से इस संबंध में वेबसाइट पर सूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने सवर्ण जातियों के विकास के लिए उच्च जाति आयोग का गठन किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को उच्च जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं दयानंद राय, जयकृष्ण झा और राजकुमार सिंह को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया है। पश्चिम चंपारण के रहने वाले शैलेंद्र कुमार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रेमशिला गुप्ता, तल्लू बास्की और राजू कुमार सदस्य बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं राज्य के दक्षिणी जिलों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी।
अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
आकाशवाणी पटना के लेखापाल विनोद कुमार श्रीवास्तव और अभियांत्रिकी अनुभाग में कार्यरत कमरे आलम आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी केंद्र प्रमुख हेमंत डीसी डाम सहित वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का केवल एक तीर है। आतंक का फल अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचल देगा। श्री मोदी ने रोहतास के विक्रमगंज में 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी की। 1250 पदों के लिए 2 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।